السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد، پونا شہر کے انٹلیکچوئلس اور لیڈر حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے، میں ہندوستان بھر بھی جاتا ہوں، دنیا میں اور بہت سی جگہ بھی جاتا ہوں، اس میں پبلک ایڈریسز بھی کرتے ہیں، 5,000, 10,000, 20,000 لوگوں کو ایڈریس کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن انٹلیکچوئلس کے درمیان بات کرنا بہت سیریس ایشو ہوتا ہے. اور ماشاء اللہ آپ لوگوں کا تعارف سن کر تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ امت جو ہے بانجھ نہیں ہے، اس امت کی کوک سے ایسی باصلاحیت افراد، کوئی اسرو کا سائنٹسٹ ہے، کوئی بہت بڑا جو ہے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے، کوئی بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، اور کوئی کسی اور میدان میں، کوئی ایجوکیشن کے میدان میں، کوئی جو ہے اور میدان میں کام کر رہا ہے. اٹس ونڈرفل، امیزنگ، بہت ہی جو ہے خوشی ہوئی مجھے. اور ٹیلنٹڈ لوگوں سے ملتے ہیں تو خود ہمارے اندر بھی انرجی پیدا ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے. میں تقریر بہت لمبی نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے انٹلیکچوئل سے میں بات کر رہا ہوں، مجھے سیکھنا ہے، لرن کرنا ہے، اس لیے مجھے آدھا پونا گھنٹے نہیں بولنا ہے، مجھے زیادہ سے زیادہ 12 سے 15 منٹ میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے، اور ایک فارمیلٹی، چونکہ انہوں نے وہ موضوع دے دیا ہے تو اس فارمیلٹی کو پورا کرنا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ لرننگ کا پروسیس شروع ہوگا، ہم ایکسچینج آف تھاٹس کریں گے. تین باتیں میں عرض کروں گا میری گفتگو مختصر. نمبر ایک یہ ہے کہ آپ میں سے جتنے یہ سب اکثر لوگ بڑے لوگ ہیں، ہے نا، 50+ کے لوگ ہیں، تو ہم لوگوں نے زندگی کے دونوں فیز دیکھے، ینگر جنریشن نے اس فیز کو نہیں دیکھا. ہم لوگوں نے جو پرانی زندگی بھی دیکھی ہے، اس کے بعد جو ریولیوشن آیا ہے، تھرڈ ویو جسے کہتے ہیں، فرسٹ ویو، سیکنڈ ویو، تھرڈ ویو، آپ نے ایلون ٹافلر کو پڑھا ہوگا، جس میں تھرڈ ویو میں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایکسپلوژن ہے، اور ٹرانسپورٹیشن کی جو فیسلٹیز آ گئی ہیں، اور سائنس نے جو کچھ ترقیاں کی ہیں، یہ دونوں دور ہم لوگوں نے دیکھا ہے. اس کا مزہ الگ ہے. ہمارے بچوں کو بولیں گے فون کے بغیر زندگی ہوتی ہے، وہ امیجن ہی نہیں کر سکتے. صبح آنکھ کھلتی ہے تو فون دیکھتے ہیں، سلام پھرنے کا سب سے پہلے فون چیک کرتے ہیں، ان کی زندگی جو ہے ان سب چیزوں سے لگی ہوئی ہے. اور جو ٹرانسپورٹیشن ہے، گھر میں جو سہولیات ہیں، یہ سب ہمارے بچے دیکھتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس زمانے میں ان سب چیزوں کے بغیر بھی جیے ہیں. آگے دنیا جو ہے اور زبردست ترقی کرے گی، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم ایسی دنیا میں جیتے ہیں جہاں سہولیات ہیں، سائنٹیفک ایکسپلوژن ہے، نالج ہے، بہت سی چیزیں ہیں، اور زندگی کو ان سب چیزوں نے آسان کر دیا، فون نے، کمپیوٹر نے، انفارمیشن ٹیکنالوجی نے. آگے جاپان کے بارے میں یہ ہے کہ صاحب اس نے کام شروع کیا 2016 میں، اینڈ بائی 2032 جو ہے، کیونکہ وہاں کار کی انڈسٹری ہے، ہر منٹ میں ایک کار بنتی ہے، ہر منٹ میں ان کو میٹل چاہیے، میٹل دنیا بھر سے ایکسپورٹ کرتے ہیں. اب انہوں نے ایک ڈیزائن یہ کیا کہ صاحب ایک شپ وہ بنا رہے ہیں، ڈیزائن شروع ہو گیا، اینڈ بائی 2032 جو ہے وہ اس کا کام شروع، مطلب ایک ایکسٹریکشن شروع ہو جائے گا کہ شپ سمندر میں کھڑے گی، اور وہاں سے 10-12 کلومیٹر سمندر کے اندر جو بورنگ کریں گے، اس کے بعد ٹیکٹونک پلیٹ کو بورنگ کریں گے، پھر اندر سے جو میگما ہے، جو مولٹن میٹل ہے، وہ آنا شروع ہو جائے گا. دنیا کے لیے ایک حیرت انگیز جو کام ہوگا، جب مولٹن میٹل آپ جتنا چاہیں آپ کے گھر کے آنگن میں انڈیل لیجیے، جو چاہیں بنا لیجیے. دنیا میں ایسی ترقی ہو رہا ہے بھائی. 2040 چاند میں 1.5 لاکھ کی کالونی ہوگی، یہ چیزیں کام چل رہی ہیں، اور مارس پر انسان جانا شروع ہو جائے گا، ونس ان اے ویک یہاں سے جو ہے فلائٹ جانے شروع ہو جائیں گے. میں جاپان گیا تھا، وہاں تو بلٹ ٹرین میں بیٹھتا ہوں تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بلٹ ٹرین کی جو اسپیڈ ہے 600 کلومیٹر/آور کی رفتار سے جاتی ہے. انجن تو ڈیزائن فدرڈ ہے، لیکن آلموسٹ 300-350 کلومیٹر کی رفتار سے جاتی ہے بھی مہنگا. میں ہیروشیما دیکھنے کے لیے گیا تو جانے کا ٹکٹ میرا 14,000 روپے ہوا، ٹرین سے آیا تو 16,000 روپے ہوا. تو ٹرین تو اتنی مہنگی، اب تو ایسی ٹرین آ جائے گی جیسے بلٹ فائر کرتے ہیں، ویسے کیپسول میں بٹھا کر انسان کو یہاں سے فائر کیا جائے گا، تو اس کی رفتار ہے 1,100 کلومیٹر/آور. یہاں سے آپ کو دلی جانا ہو تو اگر 1,000 کلومیٹر ہے تو ایک گھنٹے میں آپ چلے جائیں گے. تو ایک ایسی دنیا میں ہم رہتے ہیں جس کے بارے میں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے تھے، 1967 میں انہوں نے تقریر کی. مجھے تعجب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بازو کیسے ویژن دیتا ہے. 67 میں چاند پہ جب انسان گیا تھا انہوں نے تقریر کی، انہوں نے بتایا کہ قیامت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، بہت سی چیزیں ہم جو پڑھتے ہیں اس زمانے میں 67 میں جو امپاسبل لگتا تھا، جیسے جنتی دوزخیوں سے بات کریں گے، دوزخی بولیں گے پانی دے دو، جنتی بولیں گے پانی دے سکتے، آراف میں کھڑے ہو کر ادھر جنتیوں سے بات ہوگی، ادھر جہنم میں سے بات ہوگی، قرآن میں بہت سی چیزیں آئیں. انہوں نے کہا کہ قیامت برپا ہونے سے پہلے آسمان اور زمین اور چاند سورج اور جنت دوزخ کے بارے میں جتنی باتیں آئیں وہ سب انسان اپنی آنکھ سے دیکھے گا، دنیا میں سب کچھ ہوگا. انہوں نے کہا کہ کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. وہ کمیونیکیشن 67 میں انہوں نے کہا، جیسے آج ہم بیٹھ کے امریکہ کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی ان امیجنیبل چیز نہیں، لیکن اس زمانے میں ایک ان امیجنیبل فیکٹر تھا وہ، کہ کیسے بات ہوگی، جنتی دوزخی سے کیسے بات کرے گا. لیکن آج کی تعجب کی بات، انہوں نے اسی وقت کہا کہ زمانہ آنے والا ہے 5 کلو کا ٹومیٹو اگے گا، कद्दू जो है 10 किलो का बनेगा। ये सब चीजें उन्होंने बयान की हैं। पढ़ने से मजा आता है कि विजनरी लोग कैसे दूर की चीज देखते हैं। बहरहाली में एक ऐसे जमाने में जहां मैन मशीन, इंसान को कुव्वत चाहिए तो अंदर से स्टील का कुछ ऑपरेशन करेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये सब चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंगुलैरिटी प्रोजेक्ट, अभी वो उसने काम के प्रेस बयान में बताया कि बाई 2022 दुनिया में 7 बिलियन आबादी होगी लेकिन 10 बिलियन रोबोट होंगे काम करते हुए। और ताज्जुब की बात है कि ये रोबोट जो है मैकेनिकल काम ही नहीं करेंगे, ये लॉयर का काम भी करेंगे, जज का काम भी करेंगे, प्रेस रिपोर्टर का भी काम करेंगे। दुनिया तो मतलब एक ऐसी दुनिया में है जहां इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, हमारे लिए काम करने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं। इसलिए कभी हम सोचते हैं ना अंबिया ने जो काम किया, फिर मक्का मदीना में इनकलाब आया, तो वो जमाने के लिहाज से वो था। अब आपको अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया तो आपके काम को भी आसान कर दिया है ना, हमारे लिए बहुत सहूलियात हो गई। एक बात तो मुझे याद करनी है कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं तो हम काम करने के लिए एन नंबर ऑफ वेस मौजूद हैं, अब कोई काम के लिए लिमिटेशन नहीं है। दूसरी बात मुझे याद करना है कि इस वक्त हम दुनिया में एक बहुत ही जबरदस्त चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं और इस्लाम एज ए फोर्स टू बी रेकंड विद, एक कुव्वत की हैसियत से दुनिया में इस वक्त माना जा रहा है। इसलिए बातिल कुव्वतें उससे डर रही हैं, लर्जा बर अंदाम है और तरह तरह के इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज करते हैं कि कैसे जो है मुसलमानों को ट्रैप किया जाए, इस्लाम की बढ़ती कुव्वत को कैसे रोका जाए। पहले किताब आई थी रैंड कॉरपोरेशन की, सिविल डेमोक्रेटिक इस्लाम, इसमें मतलब इस्लाम के मानने वालों को कैसे सॉफ्ट कर दिया जाए, कैसे वो अपने क्लेम से दस्तबरदार हो जाए, नमाज पढ़ें, रोजा रखें, मस्जिद बना लें, कुरान पढ़ें, दैट्स एनफ। लेकिन आप दुनिया को बदलना चाहेंगे, पॉलिटिक्स को बदलना चाहेंगे, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग लाना चाहेंगे, टैक्स फ्री दुनिया लाना चाहेंगे, नहीं ये सब नहीं चलेगा। एक्सप्लॉयटेशन लोग करते हैं, आप एक्सप्लॉयटेशन के बगैर एक सियासत लाना चाहते हैं तो ये उनको बर्दाश्त नहीं है। अभी एक लेटेस्ट किताब आई थी बिल्डिंग मॉडरेट मुस्लिम नेटवर्क, मॉडरेट मुस्लिम का मतलब उनके नजदीक है जो मगरिब की बोली बोले तोते की तरह, ना मुसलमान का जैसा हो, जरूरत पड़ने पर कुरान हदीस भी कोट करे लेकिन बात वो करे जो मगरिब चाहे। तो ये बिल्डिंग मॉडरेट मुस्लिम नेटवर्क एक तफसीली किताब है, रैंड कॉरपोरेशन की पढ़ लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है एज मुस्लिम हमारे लिए ये बहुत बड़े फखर की बात है कि हम एक ऐसे जमाने में रहते हैं जहां हमारी कुव्वत बढ़ रही है और दुनिया को जो है अमन से आशकारा करने के लिए, अमन से जो है भरने के लिए, अमन और तरक्की इस्लाम के अंदर मौजूद है। इसमें कुछ गलत एग्जाम्पल्स भी पैदा हो गए, कुछ बैड मॉडल्स भी हैं, उसकी वजह से पूरा इस्लाम जो है रुसवा होता है। वरना यह कि हमारे पास एक उसने लिखा है अपनी किताब में डेल कारंगी ने, नोबडी किक्स ए डेड डॉग, उसका टाइटल ही है एक चैप्टर का, नोबडी किक्स ए डेड डॉग। तो कोई आदमी डेड डॉग को मारता नहीं है ना, जिसके पास जान हो, जिसके पास कुव्वत हो, उसी क्योंकि डरता है उससे इसीलिए उस पर पत्थर फेंकता है। मुसलमानों का भी यही हाल है कि उसकी जो पावर है, उसकी जो कुव्वत है, क्योंकि इस्लाम दुनिया की तामीर नौ चाहता है, एक सिविलाइजेशनल चेंज चाहता है, और जिससे ये डरते हैं। फिरौन भी यही डरता था कि हमारी शानदार तहजीब बैठ जाएगी मूसा की दावत से, वो डरते थे। तो यही सूरत हाल इस वक्त मौजूद है। ये दूसरी बात है, तफसील में नहीं जाऊंगा मैं। तो इसमें हमको एक रोल प्ले करना है। तीसरा काम यह है कि हम क्या रोल प्ले करें, यह बड़ा क्वेश्चन है हमारे सामने। आप में से बहुत से लोग माशाल्लाह दुनिया की हर चीज पा गए, अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया, दो चार नौजवान ही ये लोग भी पा लेंगे जल्दी से, कार बोलिए, घर बोलिए, बंगला, इन्वेस्टमेंट, नेम, फेम, एवरीथिंग आपके डिस्पोजल पे, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने पाया। दुनिया में सब कुछ पाने के बाद, आफ्टर हैविंग इट ऑल, व्हाट इज नेक्स्ट, एक बड़ा क्वेश्चन है। इनसीड बिजनेस स्कूल है, आपको मालूम होगा, जैसे हार्वर्ड स्कूल है, ऐसे दुनिया के मशहूर स्कूलों में एक उसका नाम है इनसीड बिजनेस स्कूल। इनसीड बिजनेस स्कूल सिखाता ही पैसे कमाना, सही है ना। अड्डे जब 30 बिलियनर बना के छोड़ता है, वो तरीके सिखाते हैं उस इंस्टीट्यूट में। लेकिन उस इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है इसी नाम से, जो मैंने बताया, आफ्टर हैविंग इट ऑल व्हाट इज नेक्स्ट, इस नाम से आप पढ़ के देखें, आपको ताज्जुब होगा। जो दुनिया में रिचेस्ट बनने का गुर सिखाता हो, फन सिखाता हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन उसने रिसर्च करने का पता चला कि दुनिया में बाद लोग ऐसे होते हैं, आफ्टर हैविंग इट ऑल, सब कुछ है, बड़ी बड़ी डिग्रियां ही, कार, घर, बंगला, बड़े बड़े कप्स रखे हुए हैं, और वो शील्ड रखे हुए हैं, मेडल्स रखे हुए हैं, ये नेम, वो फेम, सब कुछ होने के बाद फिर क्या है? तन्हाई, एम्प्टीनेस, हैलोनेस, एमलेसनेस, जिंदगी उदास। बड़े बड़े जो आप देखेंगे फुटबॉल प्लेयर, फला प्लेयर, एट द एज ऑफ 30 वो पीक पे पहुंच जाते हैं, फिर घर आकर तन्हाई में, न बीवी है, न बच्चे हैं, बस वो मेडल्स रखे हुए, कप रखे हुए, पेपर के कटिंग्स रखे हुए, दुनिया में नाम कमाया, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, दैट्स द क्वेश्चन। तो उसने एक केस स्टडी की, उस केस स्टडी पर वो आर्टिकल है, बहुत ब्यूटीफुल आर्टिकल है। उसने बताया कि द मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, है ना. लाइज नॉट इन जस्ट बीइंग अलाइव, दुनिया में जिंदा रहने का वो असल मिस्ट्री नहीं है, बट फाइंडिंग आउट ए रीजन टू लिव फॉर, कोई रीजन हो जीने के लिए दुनिया में. उन्होंने कहा कि द पर्पज ऑफ लाइफ इज ए लाइफ ऑफ पर्पज. जिंदगी में अगर कोई पर्पज नहीं है तो बेमाना जिंदगी है. पैसे दौलत इज्जत सब कुछ होने के बाद इफ यू डोंट हैव अ पर्पज फॉर लिविंग देन जिंदगी बेकार है. तो पर्पज ऑफ लिविंग को इन्वेंट करना चाहिए, इजाद करना चाहिए, और इंसान पर्पज के लिए जिए, उस पर वो पूरा आर्टिकल है. मुझे बहुत पसंद है, मैंने इंटेलेक्चुअल खासकर बताया कि साहब ये आर्टिकल पढ़ के देखें, इनसाइट एडू डॉट में जाकर आप देखेंगे तो आपको ये आर्टिकल मिलेगा. स्टीफन को भी बहुत बड़ा वो था, आपको मालूम है, ट्रेनर था. उसने ट्रेनिंग में एक आदमी को मिला, मुलाकात भी, उसने बताया कि सब कुछ है उसके पास जिंदगी में लेकिन एम्प्टीनेस है, हैलोनेस है और पीस ऑफ माइंड नहीं है. उसने पूरा रिसर्च करने के बाद उसका जायजा लेने का, एज ए काउंसलर उसने बताया कि देखो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, यू हैव एवरीथिंग एट योर डिस्पोजल लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं, अमान नहीं, और एक उम्र को पहुंचने के बाद यू फील दैट यू डोंट हैव अ पर्पस, यू लैक डायरेक्शन इन लाइफ. तो उसने कहा कि फलां चर्च को जाओ, संडे जाकर मुलाकात करो, तुमको जिंदगी का पर्पस मिलेगा. वो वहां गया तो वे समझा कि सब जाके चेक दे देंगे $1 million का, कुछ पैसे दे देंगे. चर्च वाले ने कहा हमको आपके पैसों की जरूरत नहीं, यू डोंट नीड दैट. फिर क्या चाहिए? कहा कि पूरी दुनिया में जो है अंडर प्रिविलेज बच्चों को उठाते हैं, उनको तालीम देते हैं, पैसे देते हैं, फलां करते हैं और उनका पूरा प्रोफाइल बिल्ड करते हैं. करने के बाद जब वो बड़ी उम्र को पहुंच जाते हैं बड़े पोजिशन पे, तो ये लोग वहां से उठाते हैं फिर पूरी दुनिया में फैला देते हैं. ये काम बहुत सलीके से करते हैं, हमको पता ही नहीं चलता. कहा कि तुम ये काम करने के लिए तैयार हो क्या? मिसाल के तौर पर पूना उसको दे दिया जाए वहां बैठकर. तो अब उसका काम है पूना में क्रिश्चियन मिशनरी के तहत जितनी जगह पैसे आते हैं उन सबका ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाए, बच्चों की हिस्ट्री देखी जाए, उनका प्रोग्रेस देखा जाए, फिर उनको आगे बढ़ाया जाए. एक काम है उनका, एक सिस्टम से करते हैं. तो कहा कि हमको तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, पैसे तो देने वाले बहुत हैं, तुम ये काम कर सकते हो कि यहां से बैठकर क्रिश्चियन मिशनरी के लिए दुनिया भर में ग्लोबल इंपैक्ट पैदा कर सकते हो. दैट इज क्वेश्चन. उसने कहा मैंने एस किया, उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई. पर्पज है, और खासकर बड़ी उम्र में पहुंचने के बाद एक बीमारी, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है जिसका नाम है, टेक्निकल नेम है, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम. जब आदमी बड़ा हो जाता है, उसके बच्चे उसकी बेटियां शादी हो जाती हैं, कोई अमेरिका गया, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया, जो भरा हुआ घर था वो खाली हो जाता है. दैट्स कॉल्ड एज एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम. तो उसका इलाज यही है कि वी नीड टू गेट इन्वॉल्व इन टू सम एक्टिविटीज इंसानियत के लिए, इस्लाम के लिए भलाई का काम करे. ये तीनों बातें मेरी खत्म हो गई. पहली बात मैंने बता दिया कि हम एक बहुत ही ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें नेमतें ही नेमतें हैं, खूबियां ही बहुत से. बीमारियों पर कंट्रोल कर लिया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सप्लोजन हुआ, कितनी खुशी के साथ जिंदगी बसर करते हैं, सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया. दूसरी तरफ इस्लाम जो है वो इस वक्त चैलेंज है, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज, जो बातिल नजरियात थी उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम है. और तीसरा है कि इसमें हमको जो पर्पज ऑफ लाइफ है वो फाइंड आउट करना है, और हर आदमी अपने नुक्ते नजर से दीन और इस्लाम की कुछ ना कुछ खिदमत कर सकता है. पूरी दुनिया में ऐसे एक्टिविटीज फैले हुए, जमात इस्लामी है फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल 100 काम ही मुसलमानों के करने के, तो हम एक 4-5 काम करते हैं, 95 काम अभी बाकी है करने के. आप एक कीजिए, आप एक कीजिए, आप एक कीजिए, हर आदमी के काम करने लगे तो उम्मत का बेड़ा पार हो सकता है. मैं इधर ऑस्ट्रेलिया, जापान, जहां भी मैं जाता हूँ, देखता हूँ हमारे दोस्त लोग माइग्रेट करके जाते हैं पाकिस्तान से इंडिया से, वहां जाकर एक पूरी अपनी दुनिया क्रिएट करते हैं, पूरे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, दावत का काम वंडरफुली करते हैं. जापान में जो दावत का काम जिन लोगों ने किया है, कुरान का तर्जुमा जो जापानी जबान में किया है, बहुत बड़ा बड़ा कारनामा अंजाम इन लोगों ने दिया है. आपको ताज्जुब होगा कि दुनिया में इस्लाम हर चप्पे में फैल गया सिवाय जापान के. सिर्फ 1905 में पहला मुसलमान हुआ वहां, 1905 तक इस्लाम गया ही नहीं जापान में. उसके बाद आज भी मुसलमान जो है वो जापानी जो है वो बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे दीगर भाई जो बाहर से गए वंडरफुल काम करते हैं वहाँ, दावती काम करते हैं, इस्लाम का जो है उन्होंने वहाँ के लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया, लिटरेचर को उन्होंने तैयार किया, बहुत से इस तरह के काम वो करते हैं, स्कूल चलाते हैं, क्या क्या करते हैं. तो दुनिया में करने के लिए डिफरेंट एवेन्यूज हैं, उनमें से 2-3 बात मैं अर्ज करूंगा. एक तो यह है कि एजुकेशन का बहुत बड़ा फील्ड है जो आप लोग हम लोग सब मिलकर कर सकते हैं. एजुकेशन में एक लड़का परसों मिला मुझे, वो जब बोल रहा था तो मुझे लगा कि साहब ये फंस गए हैं फीस के चक्कर में. वो चाह रहा था कि फ्री तालीम दे. मैंने कहा उसकी कोई कदर कीमत नहीं है मुफ्त तालीम की, वो तो चैरिटी एजुकेशन है. उम्मत की जो जरूरत है वो लीडरशिप एजुकेशन की है. चैरिटी एजुकेशन तो बहुत है मुफ्त पढ़ाने वाले भी, लेकिन लीडरशिप स्कूल हमारे पास नहीं जहां से लीडर्स हम तैयार कर सके. बेंगलुरु में ऐसे इंस्टीट्यूशन पाए जाते हैं जहां साल का जो है 12 लाख रुपए 15 लाख रुपए फी लेते हैं. लीडरशिप इंस्टीट्यूट है वहां से पैदा होकर निकलते हैं. यही जो हम देखते हैं टीवी में डिबेट करते हैं, टक्कर लेते हैं, इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, लिखते हैं, कौन है, यहीं से तैयार होते हैं वो, यहाँ से तैयार है वो ऊपर की सतह पर आते हैं। हमारे पास लीडरशिप क्रिएशन के स्कूल्स हमारे पास नहीं। सॉफ्ट स्किल्स ट्रेन करने के लिए औरतों को, मर्दों को, बच्चों को, ये फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री कुछ काम नहीं आते। ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन उम्मत का मसला, घर का मसला, बीवी से झगड़ा, बच्चों की तरबियत का मसला है तो ना फिजिक्स काम आता है, ना मैथमेटिक्स काम आता है, ना हिस्ट्री काम आती है, ना ज्योग्राफी काम आती है। असल काम आने वाली चीज है वो सबर है, पेशेंस है, लव है, कंपैशन है, मर्सी है, मैग्नानिमिटी है। ये सारे सिफात कहां से आएंगे? हमारे पास उसके सोशल इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो एजुकेशन का एक बहुत बड़ा फील्ड है। दूसरा है ह्यूमन सर्विस का बहुत बड़ा फील्ड है। जैसे माशाल्लाह कुछ भी, कोई जेल में काम जाके काम कर रहा है, कोई पना जगह काम कर रहा है, कोई रिक्शा दिला रहा है, कोई जो है लोगों के लिए छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट दिला रहा है, बहुत से काम हो रहे हैं हिंदुस्तान में। माशाल्लाह आप भी करेंगे ये काम, आपको भी करते होंगे, मुझे ज्यादा तफसीलात नहीं। तो एक एजुकेशन का काम है, एक है ह्यूमन सर्विस का काम, और तीसरा है वो दावत का मैदान है। दावत से मुराद ये है कि इस्लाम की हकानियत को आज के साइंटिफिक जुबान में बयान करने की जरूरत है। मौलवी और मुकर्रर बहुत मौजूद है, लेकिन आज की जो जुबान है उस जुबान में बोलने वालों की कमी है, जो साइंटिफिक पैराडाइम में बात कर सके, जो फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में बात कर सके, जो बोल सके इस्लाम की बात को। वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उस सतह के लोग मौजूद नहीं है। वो चाहिए जो साइंटिफिक जुबान में इस्लाम की दावत दे सके, जो आप जैसे लोग पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं। मेरी बेटी पढ़ती है 9th में, तो उसके क्लासमेट है, वो कभी कभी आती है, घरों में आती है लड़कियां आपस में। तो एक दिन उसके माँ बाप बुलाने के लिए आए बच्ची को, बहुत अच्छा इंसान, उससे मुलाकात हुई मेरी, डॉक्टर है, MD MS कुछ किया हुआ है, बहुत टॉप लेवल का, बहुत आला अखलाक का, बहुत जबरदस्त बात करता है। सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ, वो वैटिकन की शूरा का मेंबर है। वैटिकन में उसने कहा कि एक शूरा होती है उनकी, टॉप लेवल की, पूरी दुनिया के लोगों को लेते हैं, उसमें एक सेक्शन है इसका। वो उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि जो एथिकल इश्यूज आते हैं क्रिश्चियनिटी के सामने, है ना, एथिकल इश्यूज, जैसे LGBT है, लेस्बियन, गे और ये सारी चीजें, या अबॉर्शन का इश्यू होता है, या जो है आज वो जो मर्सी किलिंग जिसे कहते हैं, वो मर्सी किलिंग, इस तरह के जब इश्यूज आते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उस शूरा का मेंबर हूँ। शूरा में मेरा काम होता है कि मेरी एक कमेटी होती है जिसमें हम डॉक्टर्स को लेते हैं, एथिस्ट को भी लेते हैं, लेफ्टिस्ट को भी लेते हैं, मुसलमान को भी लेते हैं, एक एक इश्यू पर रिसर्च करके प्रेजेंट करते हैं, और फिर उसके बाद हमारा वैटिकन जो है पास करता है ये जायज है ये ना जायज है। और उसने मुझे जब बताया तो ताज्जुब हुआ। आप समझते होंगे ये पेपर, न्यूज पेपर वगैरह पढ़कर, न्यूज देखकर, कि क्रिश्चियन जो है बहुत लिबरल है, बे है, ऐसा नहीं है। हमारा चर्च जो कुछ तय करता है आपके इस्लाम से करीब तरीन तय करता है, ये और बात है कि दुनिया और मीडिया दूसरे लोगों के हाथ में है, वो बेहयाई फैलाते हैं। उसने कहा कि LGBT हमारे पास हराम है, उसने कहा कि अबॉर्शन हमारे पास हराम है, उसने कहा कि मर्सी किलिंग हमारे पास हराम है, बहुत सी चीजों के बारे में। तो मुझे जो खुशी हुई ये है कि बड़ी सतह पर, इल्मी सतह पर उस बात को करना, वो आम जुबान नहीं चाहिए, इंटेलेक्चुअल लेवल पर दावत का काम करना। तो ऐसे बहुत से काम है जिनमें मेरे नजदीक तीन बड़े काम है। एजुकेशन, एजुकेशन से आम एजुकेशन मुराद नहीं है, बल्कि स्किल डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट और लीडरशिप डेवलपमेंट के एजुकेशन, और ह्यूमन सर्विस के काम जिसमें जेलों से उठाने से लेकर एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का काम, और तीसरा दावत इन दी मॉडर्न लैंग्वेज बात करना, ये हमारी वक्त की जरूरत है। तो इंशाल्लाह इस पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, मजीद हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मिलजुल के बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे दिलों में प्यार मोहब्बत पैदा फरमाए, हमको उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए, इस्लाम के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।